हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 26। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हृदय से समस्त प्रकार की भौतिक आसक्ति और बुद्धि से समस्त भौतिक विचारों का परित्याग करके मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीकान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसूतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। परम सौभाग्य है हम सबका कि हम यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता, जो समस्त वैदिक शास्त्रों ग्रंथों और समस्त उपनिषदों का सार है, उसको पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। वास्तव में भक्तों, जिस पर भगवान की असीम कृपा होने लगती है ना, जिसको भगवान अपना मित्र समझने लगते हैं, जिसको भगवान अपना परम प्रिय समझने लगते हैं, उसी को यह श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता हमारे समस्त कष्टों का निवारण है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली है। गंगा के विषय में कहा जाता है, अकाल मृत्यु हरणम् सर्वपाप विनाशनम् विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम्। वास्तव में भक्तों, हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है जब किसी की अकाल मृत्यु होती है। अकाल माना अभी तक उसकी आयु समाप्त नहीं हो जाती है, फिर है ना एक्सीडेंट में या इस तरह से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। और शास्त्र कहता है कि भक्तों की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो मंद बुद्धि होते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, अकाल मृत्यु केवल उन्हीं की होती है। इसलिए कहा अकाल मृत्यु हरणम। क्यों होती है अकाल मृत्यु? क्योंकि आपके अपराध इतने घनिष्ठ हो जाते हैं कि अब आप जो ये प्रकृति है ना, वो आपके इस शरीर को और ज्यादा इस संसार में रहने नहीं देती है। मंद बुद्धि लोगों की, अब वह अपराध इस जन्म के हों, पिछले जन्म के हों, वो पृथ्वी जो है ना, वो बड़े से बड़ा भार स्वीकार कर सकती है। इतने बड़े बड़े पर्वत हैं पृथ्वी के ऊपर, इतने बड़े बड़े वृक्ष इत्यादि हैं, लेकिन उनका भार पृथ्वी को अधिक कठिन नहीं लगता सहना। लेकिन पाप भूमि से भारी, पाप जो है वो पृथ्वी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। फिर उन व्यक्तियों के जो अपराधी होते हैं, सबसे बड़ा अपराध क्या जानते हो? सबसे बड़ा अपराध ये है कि हम भगवान की शरण नहीं लेते, हम भगवान की भक्ति नहीं करते, हम भगवान के चरणों की सेवा नहीं करते। यह सबसे बड़ा अपराध है। और जब पृथ्वी इस अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो अकाल अभी तक समय पूरा नहीं होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, यदि उनकी मृत्यु लिखी भी होती, देखो भगवान के भक्तों की अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर मानो अकाल मृत्यु यानी कि ऐसे लग रहा है कि उनकी अकाल मृत्यु होती है, जैसे एक्सीडेंट हो जाए या इस तरह, तो इसके कर्मों के अनुसार उसकी मृत्यु ऐसी लिखी हुई होती है। लिखी होती है इसलिए होती है, बाकी इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जो भक्त हैं उनके लिए साफ साफ कहा गया अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उनकी अकाल मृत्यु अगर लिखी भी होती है तो भी हार ली जाती है। भगवान उनको समय देते हैं जिसमें वो भगवान का नाम उच्चारण करके सरलता से भगवान को प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि जब वो भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होता है, सर्व पाप विनाशनम। वास्तव में जो दुर्घटना होने वाली होती है वो हमारे अपराधों का फल है, लेकिन जब हम भगवान की शरण ले लेते हैं तो हमारे समस्त अपराध क्षय हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। कब? किसकी? विष्णुपादोदकम पीत्वा। विष्णुपादोदक किसको कहते हैं? गंगा जल को कहते हैं। कि जो गंगा जल पीते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, गंगा जल पीते हैं, उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और आगे पुनर्जन्म ना विद्यते, और कभी भी उनका दूसरा जन्म नहीं होता है। किनका? जिन्होंने भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जल का सेवन किया होता है। लेकिन यहाँ पर यह बात विचारणीय है कि गंगा जल जो कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकला है, यदि उनका पान करने से हमारे समस्त अपराधों का क्षय हो जाता है, हमें कभी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता है, तो यह श्रीमद् भगवद गीता जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली है, उसका श्रवण करने से हमें कितना लाभ मिलता है वह तो शास्त्र लिख भी नहीं सका। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 1 के टेक्स्ट नंबर 26 को पढ़ेंगे। मेरे साथ श्लोक उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। तत्तापश्यत्थान पार्थः पितृन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्र पश्यत्थान् पार्थ स्थान, यानी कि स्थितान का क्या मतलब है, खड़े उस जगह पर स्थितान, पश्यत स्थितान ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तत्र पश्यत स्थितान पार्थ, तत्र मतलब वहां पर, पश्यत मतलब देखा, स्थितान मतलब खड़े हुए पार्थ। अब क्योंकि भगवान ने सेंटर में खड़ा कर दिया ना पार्थ के रथ को, फिर क्या बोला, ऐसे बोला, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मैक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेता कुरुनीति। श्लोक नंबर 25 में, जो कि भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से उच्चारण किया हुआ प्रथम श्लोक था भगवद गीता का। कुछ जो कहते हैं भगवद गीता में पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ शिक्षा नहीं दी, कुछ आदेश नहीं दिया, कुछ बात नहीं की, लेकिन यहाँ हमें दिखता है कि श्लोक नंबर 25 भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से अर्जुन, ये संजय बता रहे धृतराष्ट्र को, लेकिन बोल रहे तो भगवान श्री कृष्ण है ना, तो इनडायरेक्टली ये भगवान श्री कृष्ण का श्लोक 25 था। और फिर आज क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसको बोला, देख लो, चलो देख लो कि तुम्हें किसके साथ लड़ाई करनी है, तो अर्जुन ने जब देखा तो तत्र मना वहां, पश्यत मना देखा, स्थितान मतलब खड़े हुए पार्थ, पार्थ ने किसको देखा, पितृन्नथ पितामह, पितृन मतलब पितृ, यानी पितृ यानी मेरे जो पिता है ना उनके लेवल के लोग, जितने पितृ हैं, पितामहान यानी कि जो भीष्म पितामह है ना उनके लेवल के लोग, आचार्यान मना जो द्रोणाचार्य है ना उनके लेवल के लोग, मातुलान यानी मामाओं को, जो जैसे हमारे ना माता के कुल के जितने लोग हैं ना उनको, भ्रात्रान मतलब भाइयों को, जो उनके सारे भाई। अब भाई में क्या क्या आ जाता है, उसके अपने भाई जो पांडव हैं पांचों वो भी आ जाते हैं, और जो दुर्योधन के भाई हैं वो भी आ जाते हैं, क्योंकि कजन भी तो भाई होते हैं ना। पुत्रान, पुत्रान माना पुत्रों को, क्योंकि उसने अपने पुत्र, उसके अपने पुत्र जैसे अभिमन्यु और दूसरे उसके भाइयों के पुत्र, वो सब भी इकट्ठे थे। पौत्रान मतलब जो उनके पुत्रों के पुत्र जितने जितनी से एज थी ना वो भी, और सखींस यानी मित्र जितने थे उनके अर्जुन के वो भी उसको दिखाई दिए। श्वसुरान मतलब द्रुपद है जैसे, और है ना उनके सुभद्रा के पिताजी, और ये सब क्योंकि सारे कौरव इकट्ठे थे ना तो वो सब नजर आ रहे थे। सूर्यदस यानी शुभ चिंतक थे, जो उनका उनके वेल विशर्स थे वो सब देखे। च एव निश्चय ही, एव मना निश्चय ही, सेनयो यानी सेनाओं में, उभयो रपि, उभयो मतलब दोनों सेनाओं में दोनों पक्षों में, अपि सहित। यहाँ पर अर्जुन ने जिन जिन को सेना में देखा है ना उनका वर्णन हुआ है, अर्जुन की क्या कंडीशन होगी जब उसने, भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ को खड़ा किया तो अर्जुन को क्या देखा। पहले हम लोग श्लोक को उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। तत्र पश्यस्थितान् पार्थ पितृन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि. फिर से तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि. फिर से तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि. एक बार लास्ट. तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि. अनुवाद. अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा. कहा जाता है इस महाभारत के युद्ध में संपूर्ण कौरव, जितने भी कौरव थे, वो सब मिलकर इकट्ठे हो गए थे लड़ाई करने के लिए. अब ये पांडव भी कौरवों में ही शुमार होते ना, क्योंकि कुरु खानदान के थे. तो संपूर्ण जितने भी लोग, जितने भी थे ना, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे यंगर्स, बिल्कुल यंग एज के थे ना, वो सब यहाँ इस युद्ध में आकर खड़े हुए थे. इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है अर्जुन ने किन किन को देखा मध्य में, अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, यानी कि जितने भी. और पता है इस युद्ध में कौरवों की 5 पीढ़ियां शामिल थी. 5 पीढ़ियां से कैसे जाएंगे, जैसे शुरू शुरू में शांतनु थे ना उनके कुल के, हमने शांतनु से पढ़ा, स्टार्ट किया. शांतनु के भी भाई एक थे जिनका नाम था भूरिश्रवा, तो उनके भाई, शांतनु के भाई थे भूरिश्रवा, वो इस युद्ध में लड़ाई करते. शांतनु तो क्या, वो तो चले गए थे इस नित्यलीला, मतलब वो चले गए थे इस संसार का त्याग करके, लेकिन उनके भाई भूरिश्रवा थे वो इसमें युद्ध कर रहे थे. और उनसे नीचे जाएं तो फिर है ना भीष्म पितामह आते. तो भीष्म पितामह की एज के जो थे वो थे भीष्म, शकुनि, शल्य, ये सब, मतलब सोमदत्त जैसे, वो सब एक ही लेवल के थे, वो सेकंड पीढ़ी. ठीक है, पहली वाली पीढ़ी कौन थी, शांतनु के भाई और उनके एज के लोग. उसके बाद दूसरी पीढ़ी भीष्म पितामह और शल्य शकुनि. उसके बाद तीसरी पीढ़ी कौन सी थी, जिसमें ना पांडव आते हैं. पांडव खुद तो स्वयं तो पांडव की डेथ हो गई थी, लेकिन उनकी एज के जितने भी थे ना वो भी है ना इसमें थे, जैसे धृतराष्ट्र के इनके कजन्स और ये सब, ये भी थे. और उनके नीचे अगर हम जाएं तो ये पांडवों के पुत्र और कौरवों के पुत्र जैसे दुर्योधन और अर्जुन इत्यादि ये सब थे, और इसके भी नीचे जाएं तो अभिमन्यु लक्ष्मण, अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अर्जुन के पुत्र थे, और लक्ष्मण किसके पुत्र थे? दुर्योधन के पुत्र थे, भूरेश्वरा इत्यादि। सो ये सब बना, यानी कि पुत्र शांतनु से लेकर अभिमन्यु तक पांच पीढ़ियां जो थी वो इस युद्ध में लड़ाई करने के लिए आई थी। तो ये सब मिल गए थे, इकट्ठे हो गए थे, और अर्जुन जब सेंटर में खड़े हुए तो इन सबको देखा। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बताएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख रहा था, यानी जितने भी रिलेटिव्स थे आज तक, जिन्हें देखा था, जिन्हें आज तक देखा भी नहीं था, वो सारे रिलेटिव्स यहाँ पर आकर इकट्ठे हुए थे। वह अपने पिता के समकालीन भूरेश्वरा जैसे व्यक्तियों, पिता के समकालीन माना उनके जो पिताजी थे अर्जुन के, कौन? पांडव। तो उनके जो एज के लोग थे, भूरेश्वरा इत्यादि वो थे। भीष्म तथा सौमदत्त जैसे पितामह, अब भीष्म पितामह जैसे थे, और उनके साथ शकुनि थे, शल्य थे, और सौमदत्त थे, वो उनकी एज के थे। उसके बाद द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरु, अब उनके गुरु जिनसे उन्होंने शिक्षा ली थी, जैसे द्रोणाचार्य कृपाचार्य, ऐसे श्लोक में लिखा हुआ है ना, आचार्यान मातुलान भात। तो ये सब आचार्य थे, और मातुलान के लिए क्या कहा, जैसे शल्य तथा शकुनी उनके मामा थे ना, शकुनी जैसे गांधारी के भाई थे तो भी उनके मामा, और शल्य जो थे वो माधुरी के भाई थे, जो उनके माधुरी थी ना, जो नकुल और सहदेव की मम्मी, उनके भाई थे, तो ये भी यहाँ युद्ध में थे। दुर्योधन जैसे भाइयों, और दुर्योधन भी उनके भाई थे, और दूसरे भी तो भाई हुए ना सारे कजन, उन भाइयों को देखा। और लक्ष्मण जैसे पुत्रों, लक्ष्मण दुर्योधन के पुत्र थे और साथ में अभिमन्यु थे, और दूसरे पांच पांडवों के पांचों बेटे थे। अश्वत्थामा जैसे मित्र, अब ये अश्वत्थामा इनके मित्र थे, वो भी उन्होंने देखे। और कृतवर्मा जो उनके शुभ चिंतक थे, हमेशा उनका साथ देते थे, शुभ चिंतक यानी कि जो वेल विशर होते हैं वो सारे थे, वो भी देखे। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे, यानी कि इन दोनों सेनाओं में बहुत सारे दोस्त भी थे, बहुत बड़ी हमारे रिस्पेक्टेबल पर्सन्स थे, बहुत घनिष्ठ थे, पिताओं की एज के थे, और इन सबको देखा जब उसने, तो उसके पास उसको क्या फील हुआ, यानी कि उसको कैसा लगा, वो अभी नेक्स्ट श्लोक में हम पढ़ेंगे कि उसने कैसा अनुभव किया। विचार कीजिए भक्तों, ये कैसी स्थिति होगी अर्जुन के लिए, जब अर्जुन युद्ध में खड़ा है, उसको लड़ाई करनी है, और लड़ाई किसके साथ की जाती है? शत्रुओं के साथ की जाती है, लेकिन अब आज जो देख रहा है वो, तो दोनों पक्षों में दोनों उसके ही परिवार के लोग नजर आ रहे हैं, परिवार के साथ उसको युद्ध करना है, और संभवतः सबका सर्वनाश करना है। तो उसके ऊपर क्या मतलब बीती, ये सब देखकर आगे हमें बताएंगे, संजय बता रहे हैं चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 27 में। तान समीक्ष सकांतेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया वेष्टो विशीदन्न दम अब्रवी। फिर से पढ़े, तान् समीक्ष्य सकान्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयावेष्टो विशीदन्नि दम अब्रवीत्। विषीदन इदम अब्रवीत। विषीदन का मतलब होता है शोक उसने किया, और इदम आता है क्योंकि ये दन पे रुकेंगे और दोनों ना उसके साथ आ जाएंगे, और ई की मात्रा है ना वो ई द के साथ लगेगी। ठीक है, फिर से पढ़ें। तान समीक्ष्य सकान्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। ठीक है, अब सही, वापस से एक लास्ट। तान् समीक्ष्य सकान्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। तान् मतलब उन सबको, उन सबको तो किन सबको, जिनको देखा था ना अभी, पितरों को, पुत्रों को, मित्रों को, उन सबको। समीक्षे मतलब देखकर, स यानी वह, कौन्तेय कौन्ती पुत्र, सर्वान सब प्रकार के बंधुओं यानी संबंधियों को, अवस्थितान स्थित, कृपया, कृपया मतलब दया, दयावश होकर, परया मतलब अत्यधिक, उसके ऊपर बहुत दया उसके अंदर आ गई, अत्यधिक आविष्ट यानी अभिभूत हो गई, और विषीदन शोक करता हुआ इदम अब्रवीत। इदम अब्रवीत मतलब ऐसे बोला। अब कैसे बोला वो तो नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे हमें संजय, लेकिन अभी क्या हुआ उसके साथ, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। जब उसने देखा कि सब मेरे अपने हैं, मेरे ही अपने हैं, मेरे मातरान पितरान, ये पिछले हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा ना, तत्र पश्यात् स्थितान् पाथान् पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनायोरुभयोरपि। जब इतने सारे अपने संबंधियों को देखा तो, क्योंकि वो भगवान का भक्त था, तो भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि उसके अंदर करुणा होती है। कृपया परयाविष्टो, बहुत ही सुंदर शब्द संजय ने उच्चारण किए हैं कि जब भगवान, जब अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था तो उसके अंदर करुणा होना स्वाभाविक है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनी सेना तरोरपि सही श्रोणा अमानी न मान देना कीर्तन नेह सदा हरि। राह में गिरे हुए तिनके से भी, जो अपने आप को तुच्छ समझता है और जो वृक्ष से भी अधिक सहनशील है, जो अपने लिए मान की कोई उपेक्षा नहीं करता और अन्य समस्त लोगों का सम्मान करता हूँ, ऐसा व्यक्ति हरि नाम का सतत कीर्तन कर सकता है। यानी कि अगर भगवान के कीर्तन को कंटिन्यूअस करना है, अगर भगवान के नाम को हमें सतत जप करना है, तो उसके लिए हमारे अंदर एक ही क्वालिटी होनी चाहिए और वो है दया भाव, करुणा भाव, विमल हृदय, नरम हृदय। और वो यदि नरम हृदय नहीं होगा, यदि हमारे अंदर करुणा नहीं होगी, यदि हमारे अंदर नम्रता नहीं होगी, तो भक्ति का बीज हम उस भूमि में नहीं उगा सकते। देखो, आपके पास भगवान ने आपके ऊपर सबसे बड़ी कृपा कितनी क्या की है, कृपा उसी दिन हो गई जिस दिन आपको मनुष्य देह मिला। उससे बड़ी कृपा भगवान ने दी कि आपको इतना स्वस्थ बनाया कि आप शास्त्र अध्ययन कर सकते थे।
उससे बड़ी कृपा आपको साधु संग प्राप्त हुआ, यानी कि आपको ऐसा संग प्राप्त हुआ जो आपको भगवान के विषय में बता सके, जो आपको ये बता सके कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। और उससे भी बड़ी कृपा ये हो गई कि आपको समय दिया, आपको फिजिकली फाइनेंशियली मेंटली एकदम परफेक्ट रखा ताकि आप वो कार्य कर सको जो साधुओं से आपने सुना है। ये कृपा है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मुझ पे जब कृपा, कोई मनुष्य इस स्टेज पर आकर भी यदि कोई कहता है ना कि मुझे भगवान की कृपा होगी तो मैं जप करूंगा, तो धिक्कार है उसकी सोच पर। और क्या करे वो, भगवान क्या करे बताओ, इतना सब कुछ कर लिया, अब भक्ति का बीज दे दिया, यानी कि ये भक्ति उस दिन जिस दिन किसी साधु से टक्कर हुई और उसने ये बताया कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, उस दिन तुम्हें भक्ति का बीज मिल गया। अब तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उस भक्ति के बीज का क्या करते हो, क्या करना होता है। यदि एक दिन हमें बीज मिल जाए और हम उसको कब्बट में संजो कर रख दें, एक तिजोरी के अंदर बंद कर दें, तो क्या वह बीज कभी अंकुरित होगा? कदापि नहीं। उस बीज को यदि अंकुरित करना है तो उस प्रोसेस से गुजरना होगा जिसमें बीज को बोकर उसको पानी दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज तुम्हें क्या चाहिए, उस बीज को बोने के लिए एक नरम जमीन चाहिए। ऐसी नरम जमीन होनी चाहिए, जमीन इतनी विनम्र होनी चाहिए कि उसके अंदर बीज बोया जा सके। याद रखिए मैंने पहले बताया कि हम टाइल्स के ऊपर या कोई कड़क सीमेंट की बनी हुई जगह पर बीज को नहीं बो सकते, उसके लिए हमें नरम धरती की आवश्यकता होती है। और यह नरम विनम्रता यह जो हमारे अंदर दया करुणा का भाव है ना, उसी में भक्ति का बीज जो है वो हम अंकुरित कर सकते हैं। तो और जब उस विमल हृदय के अंदर भक्ति का बीज डाला जाता है, उसके बाद क्या करना है, बीज डाल देना इनफ नहीं ना, उसको हमें सींचना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है, तब कहीं जाकर वह बीज अंकुरित होता है। और जो ये भक्ति का बीज है ना, वो किसी धरती पर नहीं, वो हृदय पर अंकुरित, उसको हृदय के अंदर बीज को बोना होता है। और पानी कौन सा देना होता है, सिंचन किससे करना होता है, कृष्णदास कविराज महाराज बताते हैं कि ना चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, श्रवण कीर्तन जले सिंचनम, कि इस बीज को पहले अपने विमल हृदय के अंदर बो दो और श्रवण और कीर्तन के जल से इसको संचन करो। इसको संचलित करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे हमें बाहरी पौधे को भी संचालित करने के लिए सूर्य प्रकाश, जल और हवा की आवश्यकता होती है ना, लेकिन भक्ति के बीज को अंकुरित करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, श्रवण और कीर्तन, यानी कि ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। अब अगर किसी बीज को हम लोग, किसी वृक्ष को पानी देते हैं लेकिन उसे सूर्य प्रकाश और हवा नहीं मिलती है, तो क्या वो अंकुरित होगा, वो सड़ जाएगा अंदर ही अंदर अगर उसको धूप और है ना हवा नहीं मिलेगी। उसी तरह से यदि श्रवण और कीर्तन में से एक को कंटिन्यू करेंगे ना, तो भी हमारी भक्ति का बीज जो है वो अंकुरित नहीं होगा। हमें दोनों को कंटिन्यू करना होगा, श्रवण भी करना है और उसके साथ साथ भगवान के नाम का कीर्तन भी करना है, तभी हम अपने इस बीज को वृक्ष की शक्ल में अंकुरित कर सकेंगे। और ये एक इतनी खूबसूरत बेल बनेगी। और जब जैसे जैसे हम श्रवण करते जाएंगे, श्रवण करते 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 और कीर्तन करते जाएंगे, भगवान के नाम का जप करते जाएंगे, तो एक दिन ये भक्ति लता का जो बीज है, ये भक्ति लता इतना बड़ा हो जाएगा, इतना ऊंचा होगा कि समस्त आसमानों को चीर कर गालोक वृंदावन धाम में भगवान श्री युगल किशोर के श्री चरणों तक समर्पित हो जाएगा। हमारी भक्ति लता में एक पुष्प अंकुरित होगा। लेकिन यदि हम उसे यह अनुकूल वातावरण प्रोवाइड नहीं करते हैं, जैसे ना उसे करुणामयी हृदय प्राप्त होता है, ना उसे श्रवण प्राप्त होता है और ना कीर्तन का अवसर प्राप्त होता है, तो वह भक्ति का बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। तो कृपया, यह बहुत मुश्किल से मिला है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमयते कौन भाग्यवान जीव। कौन भाग्यवान मतलब कोई एक होता है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उसमें 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में कोई कीड़ा है, कोई गटर का कोई खटमल है, कोई कॉकरोच है, कोई छिपकली है, कोई मच्छर है, कोई मक्खी, कोई क्या है, लेकिन उनको किसी को नहीं मिलता। ब्रह्मांड भ्रमयते कौन भाग्यवान जीव, सबके अंदर आत्मा है लेकिन किसी को नहीं मिलता, केवल मनुष्य शरीर में। और मनुष्य शरीर में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी को नहीं मिलता। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। करोड़ों करोड़ों जीव जो के इस सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी कृष्ण भक्ति का ये बीज प्राप्त नहीं होता। और चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी। जब गुरु और कृष्ण की अपार कृपा होती है ना, तब आपको यह भक्ति का बीज मिलता है। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितना सीरियस होकर, कितना सिंसियरली इस बीज को बोकर आप भक्ति लता में एक पुष्प को अंकुरित करते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।